ओम शांति। सभी किसानों से इंद्र एक बार बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इंद्र कहता है कि मैं अब बारिश नहीं लाऊंगा। तो सभी किसान अपनी अर्जी लेकर इंद्र के पास पहुंचते हैं कि कुछ भी करो बारिश। इंद्र कहता है नहीं। वो लोग कहते हैं बारिश। इंद्र कहता है ना। और इंद्र कहता है कि जब तक मैं बारिश नहीं करूंगा, जब तक शिव जी डमरू ना बजाए, और इससे पहले कि सभी किसान शिव जी के पास पहुंचे, इंद्र प्राइवेट फोन कॉल से शिव जी को बता देते हैं कि किसान तुम्हारे पास आएंगे, परंतु तुम डमरू अगले 12 साल तक मत बजाना। सभी किसान शिव जी के पास पहुंचते, शिव जी को कहते हैं बारिश डमरू। शिव जी कहते हैं ना, मैं नहीं बजाऊंगा। उदास, निराश, हताश सभी किसान धरती पर और बैठे रहते हैं, अब क्या करें। पर एक किसान होता है, वो अभी किसानी करते रहता है, अभी भी सब कुछ करते रहता है, खेत का सारा काम। 2-3 साल तक तो लोग देखते हैं, फिर सभी किसान दूसरे उसके पास आकर कहते हैं कि जब तुमको पता है कि 12 साल बारिश नहीं आने वाली है, तुम अब भी क्यों कर रहे हो। तो वो क्या कहता है, अगर मैं ना करूं तो मैं खेती करना ही भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे करना बहुत आवश्यकता है प्रैक्टिस के लिए। और ये बात ऊपर से पार्वती जी सुन लेती है और भाग कर जाती है और शिव जी से कहती है कि देखा आपने, वो किसान जब उसे पता है कि 12 साल बारिश नहीं होने वाली है, फिर भी खेती कर रहा है, आपका क्या हाल होगा 12 साल डमरू नहीं बजाओगे तो। तो शिव जी तुरंत उठते हैं, अपना डमरू लेते हैं और बजाना चालू, और मूसलाधार बारिश। अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गए, अपना वादा इंद्र से किया हुआ। तो क्या चाहिए, निरंतर अभ्यास। ये एक दिन की बात नहीं है, ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है, लंबे समय का अभ्यास, बहुत काल का पुरुषार्थ, दीर्घकालीन अभ्यास। एक दिन कर लिया छोड़ दिया, एक हफ्ता कर लिया छोड़ दिया, एक मास कर लिया छोड़ दिया, 6 मास कर लिया छोड़ दिया, 1 साल कर लिया छोड़ दिया, 6 साल कर लिया छोड़ दिया, से कुछ नहीं होगा। सतत निरंतर गतिशील प्रवाह बहता रहे। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2002। बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, कौन सी रूहानी एक्सरसाइज दी थी कल, निराकार और नीचे फरिश्ता, इधर फरिश्ता, और ऊपर निराकार। तो निराकार और फरिश्ता, बाप दादे ने जो रूहानी एक्सरसाइज, तो कल इस एक्सरसाइज के 10 फायदे बताए थे शारीरिक एक्सरसाइज के, कौन कौन से, एंटीऑक्सीडेंट्स निकलते एक्सरसाइज करने से, दूसरा ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, बॉडी बिल्डिंग होती है, क्रॉनिक डिसीजेस दूर होते हैं, वेट कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, एफ फील गुड, हैप्पीनेस बढ़ती है, खुशी बढ़ती है, उसके बाद में नींद अच्छी हो जाती है, उसके बाद में हीलिंग इंप्रूव होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और उम्र बढ़ती है। ऐसे 10 फायदे उस एक्सरसाइज के, और वैसे ही 10 फायदे रूहानी एक्सरसाइज के, जिसमें आत्मा की प्रतिकार, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, जिसमें आत्मा पावरफुल होगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, जिसमें आत्मा का स्टेमिना बढ़ेगा, आत्मा का वजन कम होगा, आत्मा का वजन वेट लॉस कौन सा वजन है? आत्मा पर किसका वजन है सबसे ज्यादा? व्यर्थ का, पाप का, विकर्म का और कुकर्म का, और वजन किसका है? आत्मा को भारी किसने कर दिया है? विचारों ने भारी कर दिया है। और किसने भारी कर दिया? पुरानी दर्दनाक स्मृतियों ने, यादों ने, संबंधों ने, कड़वाहट ने, बिटरनेस ने। किसने भारी किया आत्मा को? कमेंट्स ने। और किसने भारी कर दिया? भोजन ने भी भारी कर रखा है आत्मा को। ब्रह्मा भोजन ने भारी कर दिया है। इच्छाएं, आत्मा तो बहुत हल्की फुल्की है, बोझ किसका है? ख्वाहिशों का। और तो आत्माओं में आत्मा भारी हो गई है, तो आत्मा का वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज, ड्रिल की आवश्यकता है। तो एक्सरसाइज, तो बाप दादा ने ये जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज देह की नहीं है, ये एक्सरसाइज किसकी है? रूह की है, आत्मा की। आत्मिक एक्सरसाइज है, रूहानी एक्सरसाइज है, फिजिकल नहीं, मेटाफिजिकल है, बॉडीली नहीं, सोल से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल है। ये एक्सरसाइज बड़ी सूक्ष्म है, वो एक्सरसाइज दिखाई देती है, ये एक्सरसाइज गुप्त है, अदृश्य है, इनकॉग्निटो है। निराकारी। और तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, वह सारे दिन में कितनी बार करते हो? भगवान पूछ रहा है कि जो एक्सरसाइज मैंने तुमको सिखाई, बाबा पीटी मास्टर भी है, स्पिरिचुअल फिजिकल ट्रेनिंग मास्टर, वो पीटी टीचर है, वह सारे पीटी फिजिकल ट्रेनिंग वो स्कूल में होते हैं। वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय में करते हो? कितनी बार की, ये अपने आप से ही पूछना है। निराकारी और फरिश्ता, सो निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है। ऐसी अवस्थाओं में सारे दिन भर रहना है कि जिसमें देह भान नहीं है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? कौन कौन सी अवस्था है जिसमें देहभान नहीं है? अशरीरी अवस्था, विदेही अवस्था, देही अभिमानी अवस्था, फरिश्ता, निराकारी, कंबाइंड स्वरूप, फरिश्ता और अव्यक्त और अंतर्मुखी और इस पर भी एक बार यहाँ क्लास हुई है। आठ अवस्थाएं हैं, एक 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 में थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर अभी हम उस अंतर में नहीं जाएंगे आज। कौन सी अवस्था है जिसमें, और ये तो सब योग की अवस्था है, और भी कुछ अवस्था है जिसमें देहभान नहीं है? चिंतन। योग में कितना रहेंगे? तो रहो तो बहुत अच्छा है। आज तो कहा है बाबा ने, हर काम योग से करो, जितना हो सके हर काम योग में रहकर करो तो सफलता मिलेगी। चिंतन की अवस्था भी देहभान से परे की अवस्था है। मनन की अवस्था, मंथन की अवस्था भी देहभान से परे की अवस्था है। साक्षी अवस्था, ये थोड़ी अलग प्रकार की अवस्था है जिसमें देहभान नहीं है। साक्षी अर्थात यहां बैठे हैं और सारा कुछ देख रहे, डिटैच होकर देख रहे, ऑडियंस है, दर्शक है, स्पेक्टेटर है, म्यूट स्पेक्टेटर, मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ पर्दे पर हो रहा है, कुछ भी उसमें हम हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस नहीं कर रहे। तो साक्षी अवस्था, उपराम अवस्था, चिंतन की अवस्था, मनन की अवस्था और पढ़ना, पढ़ना ज्ञान को पढ़ना, ये भी देहभान के ऊपर की अवस्था है। क्योंकि पढ़ ऐसे ऐसे पढ़ना है कि जैसे कि ग्रहण किया जा रहा है उसको, लाइन लाइन क्या करना है, पीना है। पिबत राम रस, कबीर ने कहा है कि मैं राम रस पीता हूं। तो मुरली पढ़ने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। मुरली कौन सा आम है? बिन गुटली और बिन छिलके वाला, जिसमें छिलका भी नहीं है और जिसमें गुटली भी नहीं है, कुछ भी त्यज्य नहीं है। ऐसा नहीं ये काम का नहीं है, अब इसको फेंक दो। लाइन लाइन काम की है, शब्द शब्द काम का है, वाक्य वाक्य काम का है, कुछ भी त्यज्य नहीं है, कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। बूंदी का लट। तो बाबा कह रहे हैं दोनों में देह भान नहीं है, उन अवस्थाओं में दिन भर रहना है। चलो योग की अवस्था न भी रही तो चिंतन की तो रही सकती है, अगर चिंतन की भी नहीं रही तो कम से कम याद करने की अवस्था रह सकती है। क्या याद? ज्ञान की पॉइंट्स याद, कि आज की मुरली में क्या पॉइंट्स थी वो याद कर रहे, तो ये इसमें देहभान नहीं है। समान, समान में भी देहभान नहीं है। समान कोई भी एक समान कहीं से भी उठा कर ले लिया जाए तो उसमें देहभान नहीं है। अपने आप को 24 घंटे ऐसी अवस्थाओं में रखना कि जिसमें, क्योंकि देहभान आते ही, ये बीसी आते ही सारे पाप और विकर्म चालू हो जाते हैं। इसके लिए एससी, ये लड़ाई है बीसी और एससी की, सोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस की। वो क्या है? माया कॉन्शियसनेस। तो हर अवस्था उस अवस्था में रहना है जो हमको शरीर से ऊपर रखे, चाहे आत्माभिमानी, चाहे विदेही, चाहे अशरीरी, चाहे देही अभिमानी, चाहे विदेही, चाहे फरिश्ता, चाहे अव्यक्त, चाहे कर्मातीत, कर्म करते हुए डिटैच, चाहे स्वमान, चाहे आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि, हम खुद भी आत्माभिमानी नहीं है, परंतु चलो दृष्टि आत्माभिमानी है। जैसे योग कराते हैं तो सबको आत्मा देखते हैं, जरूरी नहीं उस समय वो खुद भी आत्माभिमानी है, परंतु उसको जबरदस्ती आत्मा ही देखना पड़ता है ना, क्योंकि योग करा रहा है, इज्जत का भी तो सवाल है। तो वो देखता भी है, पूरी इज्जत दांव पर लगी हुई है, तो उसको जबरदस्ती आत्मा ही देखना पड़ता है सबको। तो आत्मिक दृष्टि भी देहभान से ऊपर की अवस्था है, और चिंतन की, स्वदर्शन चक्र की, और सारे चक्र को याद करना, पांच स्वरूपों की, तीन स्वरूपों की, दो स्वरूपों की, आत्माभिमानी स्थिति की, या फिर कोई क्लास सुन रहे हैं और जैसे दादियों की क्लासेस, उसमें एक अलग से पावर है। वो दादी अभी है नहीं, परंतु उसकी आवाज, उस आवाज में प्यूरिटी के प्रकंपन है। मधुबन की क्लासेस, मधुबन की क्लासेस में मधुबन के प्रकंपन जुड़े हुए हैं। कोई दूर कहीं बैठा है और यहां की क्लासेस सुन रहा है, वो केवल क्लास नहीं सुन रहा है, यहां पहुंच भी जाता है और यहां के प्रकंपन खींच भी लेता है, दोनों चीजें उसमें, वो भी पूछी अवस्था है। तो हर उस अवस्था में रहना है। और एक सेवा, सेवा निस्वार्थ सेवा, दिल से सेवा, फ्राक दिल से सेवा, मनोयोग से सेवा, सकाश की सेवा, ये सब भी देहभान से ऊपर उठने वाली चीज है। तो बाबा यहां कह रहे हैं निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देहभान नहीं है। तो देहभान से परे होना है तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। बाबा ये नहीं कह रहे कि सुबह करो या शाम को करो, योग के समय नहीं, बाबा के कमरे में बैठकर नहीं, कब? कर्म करते समय, ड्यूटी के समय, जब क्या हो रहा है, संघर्ष, झगड़ा और क्या, जब खेचातान, जब बहुत बिजी है, बड़ा सा प्रोग्राम चालू है जिसमें सब बिजी है, और तब यह अभ्यास करो बाबा के महावाक्य, अति के समय अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात बहुत बिजी, और अंत का अभ्यास अर्थात लास्ट कर्माती स्टेज का अभ्यास, सब कुछ करते हुए और बहुत बिजी होते हुए। कैसी ड्रिल है ये, असंभव सी है एक ऊपर से देखो तो, ये नहीं हो सकता। इसलिए तो लोगों ने कर्म को ही छोड़ दिया, और हमको अच्छे से एकांत चाहिए, वहां बैठकर तपस्या करो, ये मार्ग ढूंढा सबने। भगवान कह रहे हैं वहीं रहो बीच बाजार में सबके बीचों बीच, और वहां रहकर वो कर दिखाओ जो सन्यासी हो जंगल में भी नहीं कर पाए एकांत में। तो वो है वीर और हम है महावीर। तो देहभान से परे होना है तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। क्या हो जाए? ये नेचुरल प्रैक्टिस हो जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाबा ने ड्रिल कराई, ऐसे निरंतर भव। ऐसे क्या भरो, क्या हो जाओ? निरंतर भव। तो क्या करनी है अभी प्रैक्टिस? कैसे करेंगे? नई आदत डालनी है प्रैक्टिस की, और नई आदत डालने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है। उस दिन भी कुछ बातें देखी थी, आज कुछ एक्स्ट्रा बातें देखेंगे। नई आदत, न्यू प्रैक्टिस, न्यू हैबिट क्रिएट करनी है, और यह हैबिट कैसी है? निराकारी और फिर फरिश्ता, निराकारी फिर फरिश्ता, निराकारी और फरिश्ता, और ड्यूटी के समय करनी है। ऐसा भी नहीं कि हम ड्यूटी छोड़ दे, कोई सामने मिलने आए उसको कहा रुको अभी मैं अपनी ड्रिल कर रहा हूं, मुझे अपनी ड्रिल पूरी करनी है, तुम्हारा होते रहेगा। ये भी नहीं, किसी का फोन आया हम कहे रुको अभी हम नहीं उठाएंगे क्योंकि हम ड्रिल कर रहे थे, कोई मर रहा है रुक जाओ पहले हम ड्रिल करेंगे। वो नहीं, कर्म पूरे करते रहना है। कर्म कर्तव्य जब पुकारे सब कुछ गौन है। कर्तव्य के आगे जब कर्तव्य पुकारे सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ, अपना व्यक्तिगत योग, अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ, दादी की क्लास हो, किसी की भी क्लास हो, या बाबा का अवतरण हो, कुछ भी हो, कर्तव्य सबसे परे है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि कर्तव्य है। नहीं तो ऐसा होता है बाबा नीचे आ रहे हमारी ड्यूटी है और दुखी है, हम नहीं जा पा रहे, बाकी सब लोग चले गए। ड्यूटी सबसे श्रेष्ठ है, सेवा सबसे ऊपर है। जब कर्तव्य पुकारे सब छोड़ दो, परंतु अभी कर्तव्य करते समय ही इस ड्रिल का अभ्यास करना है। तो ये एक नई आदत है, और नई आदत के लिए नया पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है माइंड में, न्यू न्यूरल पाथवे, ब्रेन में नया पाथवे क्रिएट होता है, न्यूरोनल कनेक्शंस नए उसके लिए, क्योंकि अब तक जो पाथवे है, अब तक जो पगडंडिया है मस्तिष्क में, उसको मिटाकर अब नई पगडंडिया निर्माण करनी है, और फिर वो रास्ता बन जाए पक्का। चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाने जो, ये दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, ये लंबा समय लगेगा इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है? नई आदत तो पता तो चल गई है, क्या करनी है? एक सेकंड में ऊपर, एक सेकंड में नीचे, ये है अभ्यास। आइडेंटिफाई, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई हैबिट, कौन सी आदत है जो बनानी है, वो पूरा उसका क्लियर डेफिनेशन हो। तो डेफिनेशन है 8 बजे से लेकर तो रात को 8 बजे तक, एक एक घंटे में ये अभ्यास करना है। अभी अभी मैं आत्मा इधर चमक रही हूं, अभी अभी ऊपर निराकारी दुनिया में गई, मैं निराकार आत्मा हूं, निराधार आत्मा हूं, निर्लेप आत्मा हूं, निर्लिप्त आत्मा हूं, निर्संकल्प आत्मा हूं, निर्मौन हूं, निर्बंधन हूं, तत्वों से परे हूं, निज स्वरूप में स्थित हूं, और फिर नीचे मैं फरिश्ता हूं, हल्का हूं, लाइट हूं, उपराम हूं, साक्षी हूं, चमकीली ड्रेस वाला हूं, डिटैच हूं, न्यारा प्यारा हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं। ये सारे इधर के संकल्प, यहां और फिर वहां, यहां और फिर वहां, ये है आइडेंटिफाई किया हैबिट, ये है। उसके बाद में स्टार्ट स्मॉल कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, एकदम बहुत नहीं करना है, धीरे 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 करना है इसको, थोड़ा थोड़ा, कोई भी नई चीज करनी है नहीं तो मुंह के बल गिरता है व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा चालू करना है। नहीं तो कोई सोचेगा अच्छा ये करना है, मैं अभी एक एक घंटे में दस दस बात करता हूं, बहुत अच्छा संकल्प है, पर इतना आसान भी नहीं है ये काम। ये एक्सरसाइज सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है, मुश्किल से मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि यहां सब याद है, कर्म क्षेत्र में उतरते ही संपूर्ण विस्मृति, कुछ याद नहीं है, याद ही नहीं है कि करना भी कुछ था। वर्क कॉन्शियस हो जाते, सेवा कॉन्शियस हो जाते, सेवा सेवा सेवा, वर्क वर्क वर्क, और हमारी सेवा केवल सेवा नहीं रहती है, क्या बन जाती है, सोशल सर्विस। जैसे वो लोग गरीबों को पैसे देते हैं, खाना खिलाते हैं, हमारी भी सेवा वैसी बन जाती है, काम चलाओ बस कर रहे, नाम मात्र सेवा। तो उसके बीच में ये इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो क्या करना है, छोटा छोटा चालू करना है। उसके बाद में एक्सपेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल्स, पहले से सोच लो कि ये करते समय विघ्न आएंगे, हो सकता है 3 घंटा ऐसा ही निकल जाए कि कुछ भी नहीं किया और फिर जागृति आई, अरे अभ्यास भी तो करना था, रूहानी योद्धा बनना है ना, रूहानी मसल्स डेवलप करनी है, स्पिरिचुअल मसल्स, स्पिरिचुअल बॉडी बिल्डिंग, स्पिरिचुअल जिमनास्ट, स्पिरिचुअल बॉडी बिल्डर, स्पिरिचुअल बॉक्सर, स्पिरिचुअल रेसलर, रेसर, रनर, कितनी सारी चीजें, बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत ज्यादा अभ्यास। और भूल गए तो पश्चाताप करते नहीं बैठना, अरे अरे अरे, तुरंत नया संकल्प करना है, आप करेंगे। जो 3 घंटा मिस हो गया उसको 1 घंटे में पूरा करना है, कई बार करके। तो एक्सपेक्ट ऑब्स्टेकल्स, ये मत समझो कि कुछ भी विघ्न नहीं आएंगे, सबसे ज्यादा विघ्न आएंगे जिस दिन सोचोगे आज बहुत करता हूं, उस दिन तो माया ऐसा पछाड़ेगी कि 12 गया कुछ भी याद नहीं रहेगा, पूरा दिन ही ऐसा चला जाएगा बिना ड्रिल के, ऐसा भी हो सकता है। ये लड़ाई है दिए और तूफान की, यहां गिरना और संभलना है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में मोटिवेशन को ढूंढो अपने, क्योंकि ये मार्ग में हतोत्साहित हो जाती है आत्मा, इच्छा ही कम हो जाती है, फिर स्वयं को उत्साहित करना है, फिर स्वयं में उमंग लाना है कि कुछ भी हो जाए, सारे दिन भर नहीं हुआ चलेगा, फिर से तब अभ्यास करूंगा, आई स्टार्ट नाउ, इंग्लिश में कहते हैं आई स्टार्ट नाउ, मैं अभी से फिर से चालू करता हूं, अब तक जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप, बहुत हो गया, अभी मैं नया चालू करूंगा। ये सोचते नहीं बैठूंगा कल रात ऐसा क्यों हुआ, कल दिन भर ऐसा क्यों हुआ, कल मैं क्यों नहीं कर पाया, नहीं कर पाया आज मैं करूंगा, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, आज चालू करूंगा। तो एक मोटिवेशन ढूंढना है, इसके लिए चिंतन की बहुत आवश्यकता है, दिन भर मुरली से चिंतन बिंदु निकालने, ऐसे ऐसे चिंतन की पॉइंट्स निकालनी है जो हमको बिजी रखे। जैसे कल की साकार मुरली, मौत सामने खड़ा है, कल की साकार मुरली, यदा यदा ही धर्मस्य, कल की साकार मुरली, तुम्हारे दुख कब दूर होंगे, बाबा से आंख आंख दिखाना नहीं, आंख में आंख डालना, आंखें चार करना अर्थात देखना, बाबा से देखना। तो बाबा से देखने से, को देखने से क्या होता है, चिंतन ले लेना है, मुरली में सुना, पॉइंट्स निकाला, फिर उसको विस्तार करते रहना। परसों कुछ दिन पहले था 101 पॉइंट निकालो, काहे के दुख के, भगवान ही खुद कह रहा है लिस्ट निकालो, देखो भगवान की आदत, भगवान खुद होमवर्क देता है ऐसे, लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालो, लिस्ट निकालने से बुद्धि बिजी हो जाती है। एक ही पॉइंट अगर बोला तो उसमें कब तक चिंतन करे, डेड एंड, कि चिंतन करते करते चिंतन सुन हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्या चिंतन करूं, अशरीर बनना है बस, हो गया, अभी आगे क्या करना है, बनो अशरीर, चिंतन करने की तो कोई बात ही नहीं है। पॉइंट्स, बुद्धि जो है अलग अलग पॉइंट्स पर जाती रहे, ये पॉइंट्स वो पॉइंट वहां से इधर, वहां से इधर, तो चिंतन की पॉइंट्स निकालना है, तो ही मोटिवेशन रहेगा, नहीं तो मोटिवेशन कहां रहेगा। योग को शक्तिशाली बनाना है तो सबसे पहली विधि है ज्ञान को शक्तिशाली बना। लोगों ने ज्ञान को छोड़ दिया है, ज्ञान अर्थात मुरली सुनना सुनाना बस, चिंतन उसमें नहीं है। जब तक ज्ञान का चिंतन नहीं तब तक योग की पावरफुल स्टेज नहीं हो सकती, योग में नवीनता भी नहीं हो सकती। नवीनता चाहिए हर दिन के योग में, कल जो किया था वो आज ना हो, सुबह जो किया था शाम को ना हो, हर दिन नया। नहीं तो बाबा भी तो सुन सुन के ये आ गया, मैं आत्मा हूं, आप प्रेम के सागर हो, शांति के सागर हो फिर वो बोर नहीं होता है, फिर भी सुनता है सबकी, उसको भी तो कुछ नया चाहिए, बाबा को भी तो। और अपने आप को टाइम दो, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी चीज तुरंत नहीं होती, अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि एक बार करने के बाद शाम को पता चलेगा कितने सारे विघ्न आ गए, और वो विघ्न कहां से आए, बाहर से एक भी नहीं था, सारे अंदर से निकले, और वो जो निकले हमको ही पता नहीं था ये क्या क्या निकल गया। और सबसे ज्यादा विघ्न कब निकलते हैं, योग के समय। ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करते, शाम को नुमा शाम बैठो सारी दिनचर्या याद आती है, अमृत वेला बैठो पूरा दिन याद आता है, दिन भर कुछ नहीं याद आता, जैसे खुजली होती है ना, जिसको खुजली की बीमारी होती दिन भर निकल जाता है, रात को जब सोने जाता है तब खुजली चालू हो जाती है। फुर्सत के समय, क्योंकि मन शांत है अब सारा चालू हो जाता है, अच्छा उसने ये कहा था अब देखता हूं उसको कल, ऐसा हुआ था, अच्छा चिंतन चालू हो जाता है योग में। योग में हमने देखा चिंतन जीरो तब होगा, मतलब इस तरह का व्यर्थ वाला, जब दिनचर्या में रूहानी ड्रिल अगर की जाए, आत्मा आनंद से भरपूर हो जाए अंदर ही अंदर, तो फिर योग में बैठते ही सीधा शरीर, योग में बैठते ही सीधा परमधाम, कोई संकल्प नहीं, कुछ संकल्प नहीं। जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र से बाहर निकलते जैसे वो भस्म हो गया, उसका कोई विचार नहीं। और ऐसा नहीं कि वो हम लापरवाह है उसमें, उसमें भी 100% अलर्ट है, कर्तव्य में भी और इधर भी। तो अपने आप को टाइम देना है। और उस दिन बताया था आदत के लिए और दो बातें चाहिए, एक तो विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, बार बार करते रहना है, बार बार दृश्य क्रिएट करना है, अपने आप को देखना है कि ये मैं कर रहा हूं, बैठकर आंखें बंद करके देखना है कि ये मेरे से अपने आप हो रहा है, सारी दिनचर्या देखनी है। एक और अभ्यास है अमृत वेला, जिसे किया जा सकता है, अमृत वेला अपनी दिनचर्या को देखना, ये मेरा कमरा, ये मेरा रूम, ये मेरा घर या सेवा केंद्र, वहां मैं चल रहा हूं योग युक्त, वहां मैं बैठा हूं योग युक्त, ये मेरा ट्रैवलिंग पीरियड, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, अमृत वेला देखा जा रहा है ये, कि हम इस सेवा केंद्र से गीता पाठशाला जा रहे, योग में जा रहे, सुबह देख रहे अपनी सारी दिनचर्या को। मैं इन चार लोगों के संपर्क में रोज आता हूं, सुबह ही देख रहा हूं कि इन चार लोगों के संपर्क में आते हुए डिटैच हूं, अमृत वेला विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, सुबह ही देखा जा रहा है कि हर एक एक घंटे में मैं डिटैच होते जा रहा हूं, और फिर कर्म में फिर डिटैच, फिर कर्म में फिर डिटैच, ये भी एक अभ्यास किया जा सकता है अमृत वेला, सुबह अपनी सारी दिनचर्या देखना और उसमें योग भर देना किरने। अभी मधुबन है, मधुबन में है, अभी नीचे जाना है शांतिवन, सुबह देखना कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी में बैठकर नीचे जो जा रहा हूं वो जो 40 मिनट से वो किस तरह बिता रहे हैं, उसको सफल करना है। योग तो अपने आप, योग में कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, योग युक्त अवस्था में जो कुछ किया जाएगा परफेक्ट ही होगा, बाबा से बहनों ने कहा था, बाबा हम आपकी याद में इतने मगन थे कि ट्रेन आबू रोड कब आया पता ही नहीं चला, हम आगे सिरोही पहुंच गई। तो बाबा ने कहा बिल्कुल बाप की याद नहीं थी, बाप की याद में होते तो ऐसी गलती होती नहीं, आगे कैसे पहुंच गए। हाँ ये हो सकता है लौकिक बाप की याद में होंगे। भगवान की याद में कोई है और उससे गलती हो जाए, योगः कर्मसु कौशलम्, योग से तो कर्म में कुशलता आती है, ऐसे कैसे हो सकता है कोई योग में और उससे गलती हो जाए। किससे जुड़ा हुआ है वो, उससे जुड़ा है जो चतुर सुजान है, जो ज्ञानी जाननहार है, जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है जो, अगर वो ज्ञान का भंडार है तो गलती कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके लिए अमृत वेला देखना अपनी सारी दिनचर्या को, ऊपर से नीचे जा रहे तो नीचे जाते जाते क्या करना है, 40 मिनट्स का टाइम है उसमें कितनी बार योग ड्रिल करनी है, ऊपर आना है, वहां से स्टेशन जाना है, स्टेशन पर ट्रेन आने वाली है, अभी 15 मिनट टाइम है, तब क्या करना है, ऑप्शंस है, बातें करो, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, कितना टाइम हुआ, ये हुआ वो हुआ, या फिर चुप रहो और मुरली पढ़ते रहो। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, अभी तो ट्रेन आ रही है ना, हम वेट कर रहे हैं, जितना वेटिंग पीरियड है बस के लिए, ट्रेन के लिए, फ्लाइट के लिए, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, सब में योग को भर देना है। एक वेटिंग टाइम, दूसरा कॉन्वर्सेशन टाइम, एक दूसरे से बात करने का जो टाइम पीरियड है, किसी से भी विदाउट टॉपिक बात ही नहीं करनी, इस नियम को बनाना है। कोई मिला, अच्छा क्या हाल है, अच्छा उधर क्या है, बारिश इधर तो कल से हुई नहीं, अच्छा भालू परसों मिला था उसके बाद तो पता नहीं कहाँ है, अच्छा उसमें क्रिकेट में अभी क्या है, अच्छा ये ओ, कोई टॉपिक नहीं है, एक डिस्कशन से, एक पॉइंट से दूसरे टॉपिक पर जा रहा है डिस्कशन, एक के बाद 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 एक के बाद, कोई उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, एक घंटा ऐसे ही निकल गया, फिर कल मिलेंगे सेम इसी टाइम, टू बी कंटिन्यूड। बिना टॉपिक के फोन पर तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक पूरा फोन पूरा। बताना नहीं, गुप्त रखना। वो नहीं बताएगा, हमको डिसाइड करना है, यहां सब स्व पुरुषार्थ है। तो बातचीत में योग को भर देना, वेटिंग टाइम में योग को भर देना, ट्रैवलिंग टाइम योग को भर देना, ट्रैफिक जैम में फंसे हैं योग को भर देना, हर चीज में योग को भरना है, सुन रहे मुरली क्लास उसमें स्वयं योग को भर देना है, दिनचर्या में कर्म करते हुए छोटी छोटी ड्रिल का अभ्यास, ऊपर से किरणें आ रही है मुझ पर, पड़ रही है और मुझसे फैल रही है, छोटे छोटे ड्रिल का अभ्यास, छोटे छोटे स्वमान का अभ्यास, सकाश का अभ्यास, दिनचर्या में कर्म करते हुए, लिख रहे हैं तो क्या सोचना है, इस कलम में शक्ति भरी है रूहानी, जिसमें भर रहे हैं, जिसमें हम तकदीर लिख रहे हैं आत्माओं की, भाग्य निर्माण कर रहे हैं हमारे लिखने से, लिखना, आईना देखना, चलना, उठना, खाना, भोजन बनाना, भोजन बनाना भी एक तपस्या बन जाए, भोजन परोसना भी सबसे बड़ा अभ्यास है योग का, कि जो आ रहा है उसको आत्मा, ये आत्मा है, इसमें शुभ भावना जा रही है, भोजन परोसना बहुत अच्छा अभ्यास है योग का, भोजन बनाना, परोसना, खाना, साफ करना बर्तन, कपड़े धोना, कुछ भी, सारा नहाना, ये सारे योग के अभ्यास बना देने हैं, योग का अभ्यास करेंगे, जल्दी जल्दी करो हमको मधुबन जाना है, हाँ अभी बाबा के कमरे में गए अभी ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद सारा व्यर्थ का भंडार, इसके लिए जहां से व्यर्थ उत्पन्न हो रहा है उसी को ठीक कर दो, सारी दिनचर्या में ही योग भर देना है, तो फिर पावरफुल होंगे। अच्छा ओम शांति, फिर से बैठेंगे।
Yeah. Oh, sorry then. कृष्ण।